नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया, सरकार की अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डग में स्वदेशी गोवंश संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कल नागौर के मेड़ता सिटी में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। और राज्य में कुछ स्थानों पर तेज सर्दी और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि सरकार की अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं है। अरावली पर्वतमाला को संरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। नई दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि फुलेरा, अजमेर, उदयपुर और बूंदी सहित कई शहर अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में स्थित हैं। इसमें सदियों से बसावट है। श्री यादव ने कहा कि सरकार इन पर्वत श्रृंखलाओं को हरा भरा रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली के संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि इस परिभाषा के आधार पर राज्यों को कड़े नियम बनाने होंगे।
अरावली और अरावली रेंज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इनसे सर्वेयर ऑफ इंडिया, इन सबसे इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी। और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। मैं आपको कोट अनकोट कह रहा हूं, कहीं भी कह देना, 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा, कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। राजस्थान में मातृशक्ति की गौरवमयी परंपरा रही है, हमें उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। श्री शर्मा आज झालावाड़ के डग में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार में पिछले 2 साल में महिलाओं को आगे लाने के लिए कई अहम काम किए हैं।
आज आजीविका के क्षेत्र में हमारी महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माता बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में आपके उत्थान के लिए, आपकी सुरक्षा, आपके कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया है। लगातार हमारी सरकार महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार के गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर आप देखेंगे गरीब, युवा, महिला, किसान को लेकर के हम साथ चलते हैं।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री शर्मा ने गोवर्धन बायोगैस प्लांट और सीतावाटिका का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने डग स्थित पशुधन अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी गोवंश संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में मालवी और गिर गोवंश नस्लों के संरक्षण, उन्नयन और सुधार से संबंधित काम किए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र में आधुनिक डेयरी, प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान सहित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीच विकास रथ गांव गांव पहुंचकर राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भरतपुर में विकास रथ 15 गांव पहुंचे। बाड़मेर के कारटिया और गंगासरा में भी विकास रथों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जैसलमेर के पोकरण में भी विकास रथों का स्वागत किया जा रहा है और ऑडियो वीडियो प्रस्तुतियों के जरिए सरकार के विकास काम और नवाचार बताए जा रहे हैं। मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल नागौर के मेड़ता सिटी में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। डांगावास में होने वाले इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री शर्मा भी शिरकत करेंगे। किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने बताया कि सम्मेलन में प्रदेश भर से 25,000 से अधिक किसान शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद संसद में पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 अब कानून बन गया है। इसमें ग्रामीण परिवार के लोगों को 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाले इस निर्णय का व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है। काम के दिनों की संख्या बढ़ने और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के मौके देने के लिए आमजन की ओर से इस फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया जा रहा है। भीलवाड़ा के राजेंद्र शर्मा ने इसे एक बेहतरीन कदम बताया।
सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। पहले नरेगा में 100 दिन का ही काम था, अब उन्होंने 125 दिन कर दिया है, इसलिए जनता खुश भी है और अब पैसा 7 दिन में आ रहा है।
बालोतरा की महिला श्रमिक ने इसे सरकार की एक अच्छी पहल बताया।
पहला 100 दिन मिलता था, हमको अब ये 125 दिन मिलता है। बच्चों की कोई फीस वगैरह, घर चलाने में बहुत आसानी होती है, अच्छे से घर चलता है और औरतों को बहुत फायदा मिलता है। और भी ऐसी योजना भी इसकी में छोटी मोटी हम लोगों को फायदा मिलता है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दरगाह शरीफ में चादर पेश की गई। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री की ओर से ये चादर चढ़ाई। इसके बाद श्री रिजिजू महफिल खाना गए, जहां उन्होंने खादिमों से मुलाकात की। इसके बाद बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री श्री मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ा गया। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि दरगाह से पूरी दुनिया में शांति का संदेश जाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय की ओर से प्रयास किए जाएंगे।
अजमेर शरीफ दरगाह का काफी और काम करना है, क्योंकि ये भारत सरकार का नियम से चलता है, ये पार्लियामेंट का एक्ट से दरगाह का व्यवस्था चलती है और मैं संबंधित मंत्री होने के नाते मेरे जिम्मेदारी है। हमारे साथ में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव साहब भी आए हुए हैं, हमारे बाकी ऑफिसर सब भी आए हैं, देखेंगे क्या कर सकते हैं।
राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में लड़कियों की बढ़ती रुचि सराहनीय है। कृषि भारतीय जीवन का आरंभ और आधार है, इसी से देश की समृद्धि की राह प्रशस्त होती है। श्री बागड़े आज उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि बढ़ती आबादी की जरूरतों को देखते हुए पोषक तत्वों से भरपूर अनाज उत्पादन बढ़ाने पर काम करना होगा। समारोह में श्री राज्यपाल ने विभिन्न संकायों की 1181 उपाधियां प्रदान की। उन्होंने 44 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से विकसित की गई विविध उन्नत कृषि किस्मों का भी लोकार्पण किया गया। केंद्र सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI की सहायता से केवल 6 महीनों में 660 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी रोकी है। संचार मंत्रालय ने बताया कि 1000 से अधिक बैंकों, तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली संचालकों ने डिजिटल इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म को अपनाया है। FRI को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम के सक्रिय सहयोग से चलाया जा रहा है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। मंत्रालय ने संचार साथी प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग करने वाले सभी जागरूक नागरिकों और साइबर योद्धाओं के प्रयासों की सराहना की है। इसके साथ ही नागरिक केंद्रित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए संचार साथी वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। राज्य में कुछ स्थानों पर तेज सर्दी और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में दृश्यता घटकर महज 10 मीटर रह गई, जबकि सीमावर्ती जिले जैसलमेर और श्रीगंगानगर में भी सुबह देर तक कोहरे का असर देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। जहां एक और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दिन के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी पूर्वी जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा जिलों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल से उत्तर भारत से ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। साथ ही उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी कुछ हिस्सों में फिर से घना कोहरा छा सकता है। जैसलमेर में आज अन्य पिछड़ा वर्ग पर संवाद कार्यक्रम रखा गया। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आयोग राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहा है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी। डीग में भी आज अन्य पिछड़ा वर्ग जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। भीलवाड़ा की अंजलि कछावा ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो भार वर्ग में पहला स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से यह चैंपियनशिप पिछले दिनों अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में धन शोधन की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। इस याचिका में ईडी ने निचली अदालत के निष्कर्षों पर सवाल उठाया है और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत फैसले की अपीलीय समीक्षा की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। इसके लिए सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया, सरकार की अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डग में स्वदेशी गौवंश संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कल नागौर के मेड़ता सिटी में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। और राज्य में कुछ स्थानों पर तेज सर्दी और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।